Thank you. प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। आज भी भगवान के हजारों भगवान भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं और इस तरह वे भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं।
ओम अज्ञान निरंभस्य ज्ञानांजन शलाकायं चक्षुरोत्पीतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य महामेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रोल्लादनामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकरजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् साकल्पं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकर्णा सिन्धो दीनभद्रो जगद्गते गोपेशो विकारान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामे जगद्रिये वाक्षाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैतनाथ श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परितो वत्सपरिवसांश्चारयन्यो यमुनोपवने पूजद्विजसङ्कुलितम् सर्वप्रथम भगवान श्री श्री वृंदावन श्याम सुंदर देव के विराज पावनों में तत्परिदर्शित ललिता देवी श्री विशाखा देवी प्रभृति सहित नमस्कार करने के साहचर्य में साथ ही साथ वर्तमान कलयुग में श्री कृष्ण नाम एवं श्री कृष्ण प्रेम के सहित उन्नत उज्ज्वल रस के अभूतपूर्व महामदान्य मनोविष्णु प्रभाता श्री नंदन श्रीमद कृष्णचरित महाप्रभु को भी तत्परिदर्शी नाम वृंदावन स्थल श्री शर गोस्वामी बाबू सहित नमस्कार करने के अनंतर उसी श्री कृष्ण भावना स्वभाव की अलघटना के प्रवाह का संप्रत काल में विश्वव्यापी स्तरीय विस्तारित प्रमर्शन करने वाले जगद्गुरु श्री प्रभुपाल के सुगरित आदमयों में प्रणत होने के साथ ही साथ वर्तमान उपस्थित वैष्णव श्रोता समुदाय का भी यथारूप अभिनंदन करते हुए आज की पावन वेला में श्रीमद् भागवत का सुख आस्वादन की ओर अग्रसर हो गए हैं। प्रस्तावित विषय की ओर प्रभावित हो गए हैं। तो श्रीमद् भागवत के इस तृतीय स्कंध में प्रारंभ में श्री उद्धव एवं श्री विदुर का मिलन वर्णित हुआ और इस प्रकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि कृष्ण भावनामृत के मार्ग में भक्ति योग में भजन के साम्राज्य में आयु की न्यूनता का या आयु की शारीरिक आयु की बहुलता का कोई महत्व नहीं, क्योंकि यदि शारीरिक आयु की महत्व का तथा शारीरिक संबंधों का तथा शारीरिक संबंधों में पाए जाने वाले गुरुजनत्व लघुत्व इत्यादि का यदि भजन साम्राज्य में गुरु तथा शिष्य के संबंध में अड़चन रूप उसकी प्रतीति होती है तो वह गलत है। उन शारीरिक संबंधों को भजन साम्राज्य में विघ्न अथवा बाधा के रूप में उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उन्हें उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के रक्त संबंध में श्री उद्धव है, उनके सखा हैं, घनिष्ठ सखा हैं मथुरा के द्वारका के,
और ये उद्धव बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनके साक्षात शिष्य हैं, वे स्वर्ग में गए थे एवं वहां पर बृहस्पति ने इनको उपनिषदोक्त ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। तो उद्धव को ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान श्री बृहस्पति के द्वारा प्रदत्त था एवं यही उद्धव श्री कृष्ण के संबंध में उनके भ्राता के समान ही थे, उनके रक्त संबंध में, उनके पारिवारिक संबंध में ही थे तथा भ्राता के समान ही उनका समवयस्क संबंध था, सखा भाव का, मित्र भाव का श्री भगवान में उद्धव जी का। और इधर विदुर पांडु के भ्राता हैं, महाराज पांडु के, और महाराज पांडु की अर्धांतिनी महारानी कुंती, राजमहिषी कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, वसुदेव की भगिनी रूपा है और शूरसेन की पुत्री है जो कि बाद में महाराज कुंती भोज को दे दी गई। इसीलिए महारानी कुंती के भी ये देवर लगते हैं विदुर, और पांडु के भी भ्राता है, अतएव बुआ के देवर है। तो इस तरह से विदुर जी उद्धव जी के गुरुजन ही होते हैं, गुरु जी के, उद्धव जी के पिता तुल्य ही माने जाते हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए पिता तुल्य है, उद्धव जी के लिए भी विदुर जी पिता तुल्य है। एक तो इस दृष्टि से कि मित्र का पिता भी अपना पिता है, उद्धव जी के मित्र हैं श्री कृष्ण और उनके पिता के समान गुरुजन है विदुर, अतएव मित्र के पिता भी पिता के समान ही है। और यदि रक्त संबंध की बात की जाए तो रक्त संबंध में भी वे श्री कृष्ण के भ्राता ही लगते हैं उद्धव, सके भ्राता नहीं है, चचेरे भ्राता। अतएव दोनों की दृष्टि से विदुर जी इनके गुरुजन हैं, लेकिन तथापि विदुर जी इस समय उद्धव का शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं और उद्धव के शिष्यत्व को ग्रहण करने के पश्चात जो उद्धव बहुत अल्प न्यून आयु वाले हैं अपनी तुलना में, उनका शिष्यत्व ग्रहण करके उनसे श्री कृष्ण विषय की जिज्ञासा, पृच्छा, संप्रश्न इत्यादि कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भजन राज्य में न ही शारीरिक संबंध होगा और न ही आयु की न्यूनता अथवा वृद्धि का कोई संबंध है। इस शिक्षा को सर्वप्रथम ग्रहण करने के पश्चात इस श्लोक में श्री प्रभुपाद द्वारा वर्णित कुछ तथ्यों की ओर प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा है कि नंद महाराज भूमिधर थे और उनके पास असंख्य गौएं थी। तो गर्ग संहिता इत्यादि जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं श्री कृष्ण लीला के ऊपर एवं जीव गोस्वामी पाद ने भी गोपाल चंद्र प्रभृति प्रामाणिक ग्रंथों में, प्रकरण ग्रंथों में यह स्पष्ट कर दिया है कि नंद महाराज के पास 9,00,000 गायें थी और कितनी गायों के भी स्वामी थे। उसके पश्चात श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जिस तरह से क्षत्रियों का यह स्वाभाविक धर्म होता है नर समुदाय की रक्षा करना, वैसे ही वैश्यों का स्वाभाविक धर्म होता है गो समुदाय की रक्षा करना। परंतु गो समुदाय की रक्षा में अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, केवल दंडिका की आवश्यकता होती, जबकि नर समुदाय की रक्षा में अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती। इसका एक कारण तो यह है कि गौओं के पास शिद्ध होते हैं वही उनके अस्त्र शस्त्र है, इसलिए फिर दंड की आवश्यकता है गोपों के द्वारा। रस्सी जो रज्जु होती है, रज्जु एवं दंड, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है गोपों को, क्योंकि जो गौ है ये स्वयं स्वाभाविक रूप से शस्त्रमय है, क्योंकि उनका जो शरीर है उसके ऊपर श्रिंद लगे हुए हैं, लंबे लंबे श्रिंद, अर्थात स्वयं उनका शरीर भी शस्त्रमय है। लेकिन नरसमुदाय के पास तो इस तरह की श्रिंद है ही नहीं, अतएव उनकी रक्षा के लिए क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्रों को धारण करना पड़ता है, केवल दंड मात्र से काम नहीं चलता। और यहां पे ये जो कहा गया है कि नंद महाराज वैश्य जाति के थे, वास्तव में नंद महाराज सतशूद्र जाति के थे। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि सतशूद्र क्या है, वैश्य क्या है और शूद्र क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है। तो शूद्र की एकादश जातियां बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, जैसे जो नापित होते हैं, केशों का विच्छेदन करने वाले या वस्त्रों का प्रक्षालन करने वाले जो धोबी होते हैं, या इसी तरह से वस्त्रों की सिलाई करने वाले जो दर्जी होते हैं, उसी तरह से एकादश प्रकार के शूद्र माने गए। यहां पर ध्यातव्य है कि शूद्र अस्पृश्य नहीं है, हमारे मनु संहिता इत्यादि ग्रंथों के अनुसार शूद्रों को अस्पृश्य नहीं माना गया, और न ही शूद्र मलिन होते हैं और न ही शूद्र मांस भक्षी होते हैं। यदि कोई मांस भक्षी है, मलिन है, गंदगी में रहता है, तो वो शूद्र नहीं है। क्योंकि शूद्रों का कार्य क्या है, ब्राह्मणों के घर में जाकर उनकी सेवा करना, क्षत्रियों के घर में जाकर उनकी सेवा करना, वैश्यों के घर में जाकर उनकी सेवा करना, परिचर्यात्मकम शूद्र स्वभाव जन, गीता में भी भगवान ने कहा। और जब परिचर्या तो शारीरिक भी है, वस्त्रों की धुलाई करना, उनके लिए भोजन का पाचन करना, भोजन पकाना, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, त्रिवर्णों के लिए, शूद्र जो है त्रिवर्णों के लिए भोजन पकाते हैं, उनके वस्त्रों का प्रक्षालन करते हैं, तो फिर अस्पृश्यता का विचार ही कहां रहा। जब वस्त्रों तक को छू सकते हैं, पाद संवाहन तक को कर सकते हैं ये शूद्र त्रिवर्णिक होगा, तो फिर अस्पृश्यत्व का विचार ही कहां रहा। और यदि पाद संवाहन नहीं कर सकते, वस्त्रों का प्रक्षालन नहीं कर सकते, उनके द्वारा त्रिवर्णों के द्वारा भक्षण में लाए जाने वाले भोजन को यदि नहीं पका सकते, तब तो फिर वो अस्पृश्य हो जाएंगे, और यदि कर सकते हैं तो अस्पृश्य नहीं, क्योंकि भोजन में उनका स्पर्श हो रहा है, वस्त्र जो पहनने वाले वस्त्र है उनमें उनका स्पर्श हो रहा है, समस्त कार्यों में उनका स्पर्श हो रहा है, घर में उनका निवास है, घर में उनकी चौकी लगी हुई है चारों तरफ, हर एक प्रकोष्ठ में से कोई शूद्र निकल रहा है, कोई अन्य प्रकोष्ठ में प्रवेश कर रहा है, कोई शिक्षा की सजावट कर रहा है, तो कोई गद्दी को तैयार कर रहा है, उनको अस्पृश्य फिर कैसे माना जाए। नहीं तो फिर परिचर्या ही नहीं हो सकती, यदि अस्पृश्यत्व का विचार लाते हैं तो फिर परिचर्या सेवा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और परिचर्या उनका धर्म है, इसलिए वो अस्पृश्य नहीं। अतएव शूद्रों को न अस्पृश्य माना गया है और न मलिन माना गया है, वो गंदगी में नहीं रहते, क्योंकि यदि वो मलिन है, उनकी वस्त्र भूषा में से दुर्गंध आ रही है, वेशभूषा में से दुर्गंध आ रही है, उन्होंने अनेक दिनों से यदि स्नान नहीं किया है, तो उनके द्वारा पकाए गए भोजन को त्रिवर्णी ग्रहण भी नहीं करेंगे और उनको अपने गृह तक में आने नहीं देंगे, इसलिए वो मलिन भी नहीं हो सकते। और प्रश्न रहा मांस मदिरा इत्यादि के भक्षण पान का, कोई ऐसा कहते हैं कि शूद्र प्राय मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, नहीं, शूद्र मांस मदिरा का भक्षण कर भी नहीं सकते, क्योंकि यदि मांस मदिरा भक्षी शूद्र है तो उनके हस्त का भोजन ये त्रिवर्णिक नहीं कर सकते, क्योंकि मनु संहिता के अनुसार त्रिवर्णिकों को मांस भक्षण करने का कोई अधिकार नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि मांस भक्षण करते हैं तो भले छो जाते हैं, यमन हो जाते हैं, अतएव उनके जो सेवक है वे भी मांस मदिरा का भक्षण करें ये उपयुक्त नहीं जान पड़ता। इसीलिए शूद्र नहीं मांस मदिरा भक्षी है, नहीं मलिन है और नहीं अस्पृश्य है। तो फिर जिनको अस्पृश्य बताया जाता है, मलिन बताया जाता है, मांस भक्षी बताया जाता है, वो कौन है? वो अंत्यज है, वो शूद्र नहीं है। शूद्र की जो 11 जातियां हैं उनमें वो नहीं आते, वो अंत्यज है, वो चांदार है, वो शवच है, जिसको आजकल चमार कहा जाता है, जो पहले श्मशानों की अधीक्षक रहा करते थे, श्मशान भूमि के सुप्रिंटेंडेंट को चांदार कहा जाता था पहले, वो एक जाति होती थी भारत में, जाति विशेष आज भी जो है, परंतु अभी आधुनिक बन गई है, पहले उनकी प्राचीन वेशभूषा यदि देखने को जाए तो वे मुंडों की माला धारण करते थे और उनके आसपास शिकारी कुत्ते घूमते थे तथा वे मदिरा का भक्षण करते थे। यदि अधिक चांदार के विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो जो हरिश्चंद्र वाला प्रसंग है उसको देख लिया जाए, उसमें चांडाल का कैसा वर्णन हुआ, वो चांडाल है, वो हरिश्चंद्र का जो प्रसंग है, हरिश्चंद्र जो है साक्षात यमराज चांडाल बन के आए थे और उनकी सेवा में दे दिए गए थे विश्वामित्र के द्वारा, सम्राट हरिश्चंद्र, भगवान राघवेंद्र के पूर्वज सूर्य रात और रात स्वप्न में दान दे दिया विश्वामित्र को राज्य का, वास्तव में ही दान दे दिया। तो इस प्रकार से जो मांस मदिरा भक्षी है, जो मलिन है, जिनके आसपास से दुर्गंध आती है, वे ही अस्पृश्य है और वे शुद्ध नहीं हो सकते, उनको अंत्यज कहा गया है, वे चार वर्णों से बाहर है। तो इस प्रकार से एकादश प्रकार के जो शुद्ध हैं, जैसे धोबी है, नाई है, माली है इत्यादि, माला का, इनमें से एक जाति का नाम है गो। गो एकादश जो शूद्रों की जाति बताई गई है स्मृति शास्त्रों में और श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा संपादित एवं अनुदित जो सत्क्रियासार एवं संस्कार दीपिका है, उसमें भी शूद्रों की जो एकादश जातियां बताई गई है, उसमें एक जाति है गोप जाति, जो गायों का पालन करती हो उसको गोप कहते हैं, या फिर जो अपनी इंद्रियों का पालन करते हो, गायों के द्वारा प्रदत्त दूध दही नवनीत इत्यादि के भक्षण के द्वारा जो अपनी इंद्रियों को हृष्ट पुष्ट बना रहे हो, वे भी गोप कहे जा सकते हैं। जो अपने इंद्रियों का पालन करता हो, गो का इंद्रिय भी हो सकता है, जो अपनी इंद्रिय का पालन करते हो, क्योंकि स्वाभाविक जो गौ के द्वारा प्रदान किया गया दूध है, नवनीत है, दही है, उसका भक्षण करेगा तो उसकी इंद्रिया पुष्ट होगी ही, उसका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा ही। इसलिए गोप शब्द का अर्थ है जो पंचगव्य के द्वारा, जो गायों के द्वारा प्रदत्त जो पंचगव्य है, पंचगव्य के द्वारा जो अपनी इंद्रियों का भी पोषण कर रहे हैं, वो भी गोप कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गोप है, इन गोपों को सत शूद्र कहा गया है, शूद्र प्रॉपर नहीं, शूद्र प्रॉपर नहीं, सत शूद्र, शूद्र और वैश्य के बीच में इनकी स्थिति है। तो इनको वैश्य भी कहा जा सकता है और सत शूद्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये शूद्र और वैश्य दोनों के बीच की जाति है। अतः इस प्रकार से शास्त्रों ने गोप और उसका वर्णन किया है। और फिर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो गौड़ीय वैष्णव है, वे भगवान की लीला स्थली को भगवान से अभिन्न मानते हैं। तो वास्तव में ही श्री रामानुजाचार्य ने जो विशिष्टाद्वैतवाद स्थापित किया है, विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ है कि ब्रह्म विशेष सामग्रियों से परिकरों से युक्त है। ब्रह्म केवल भगवान ही नहीं है, भगवान का जो रूप हमें परिदृश्यमान होता है हमारे नेत्रों के द्वारा, नैनों के द्वारा, चक्षुओं के द्वारा, उसी को केवल ब्रह्म कहना यह तो अपूर्ण ब्रह्म की व्याख्या है। जो त्रिभुज ललित हस्त में वंशीधारी अथवा चतुर्भुज जो नारायण है, केवल उन्हीं को ब्रह्म कहना यह तो अपूर्ण व्याख्या है, यह तो अपूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म उसको कहेंगे जबकि ब्रह्म के साथ उनका नाम भी हो, उनका रूप भी हो, उनके गुण को भी स्वीकार किया जाए, उनकी लीलाओं को भी स्वीकार किया जाए, उनके परिकरों को, पार्षदों को भी, संघियों को भी स्वीकार किया जाए और उनके निवास स्थान धाम को भी स्वीकार जब किया जाए, तब समस्त को मिलाकर पूर्ण ब्रह्म होता है। यही विशिष्टाद्वैतवाद का सबसे पहला सिद्धांत है, जो कि रामानुजाचार्य की देन है। इसलिए भगवान का धाम भगवान के स्वरूप से अभिन्न है, भगवान का धाम भी ब्रह्म है। यह नहीं कि भगवान का रूप ही केवल ब्रह्म, बिना धाम के भगवान का रूप अपूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म नहीं। अतएव भगवान के धाम को भगवान से अलग माना गया है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने तथ्यों की यहां पर विवेचना की है। अब इस कक्षा के द्वितीय सत्र में जो प्रारंभ होता है, उसमें इस श्लोक में दिए गए शब्दों का व्याकरण के अनुसार व्युत्पत्तिगत जो अर्थ है, उसकी विश्लेषणात्मक जो व्याख्या है वो की जाएगी। तो यहां पे परितः शब्द आया है सबसे पहले, क्रम से एक एक शब्द की व्याख्या हो, यहां पे परितः शब्द आया है। तो परि का परि उपसर्ग है, संस्कृत भाषा में उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय होते हैं। तो जो प्रत्यय होते हैं उनको सफिक्स कहा जाता है, क्योंकि वो शब्द के बाद आते हैं, किसी शब्द किसी प्रातिपदिक या किसी धातु के बाद आते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। और जो किसी शब्द के अथवा क्रिया के पहले आए वो उपसर्ग, प्रीफिक्स। उपसर्ग और प्रत्यय में इतना ही होता है। जैसे आगच्छति क्रिया है, गच्छति का अर्थ है वह जा रहा है, और आगच्छति आ उपसर्ग जब गच्छति क्रिया के साथ लगा तो उसका अर्थ हो गया बिल्कुल विरुद्ध आ रहा है, गच्छति का अर्थ जा रहा है, आ गच्छति का अर्थ आ रहा है। तो उसी प्रकार से परि भी एक उपसर्ग है, परंतु परि में जो रकार के पश्चात इकार है वो दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है। अब ये दीर्घ क्यों है यहां पर मैं बाद में बताऊंगा। परि उपसर्ग जो है उपसर्ग में तो ह्रस्व इकार है परि ऐसे। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर से, परि उपसर्ग का अर्थ है चारों ओर से। तो हां, तो यहां पे दो उदाहरण दिए जाएंगे परितः शब्द को समझाने के लिए, एक तो परिक्रमा और दूसरा परिचर्या, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं। तो क्रम, क्रम शब्द का अर्थ है पैर, क्रम अथवा विक्रम शब्द का अर्थ होता है पैर अथवा चरण, तथा चरणों के द्वारा जो चलना है, चलने रूपी जो क्रिया है उसको भी क्रमा कहते हैं, चलने को भी क्रमा कहते हैं, चलना अथवा क्रमा। परिवार है चारों ओर से किसी स्थान को घेर के चलना, क्योंकि परि उपसर्ग का अर्थ है चारों ओर से, इसलिए परि का अर्थ है अधः पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान वायव्य नैऋत्य और आग्नेय, चार दिशाएं हो गई उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, चार कोण हो गए ईशान आग्नेय वायव्य और नैऋत्य और अधः पूर्व, इस प्रकार से दसों ओर से घेर के चलना, इसको परिक्रमा कहा जाता है, परिशब्द का या उपसर्ग का अर्थ। उसी प्रकार से परिचर्या, परि का, परि शब्द का अर्थ चारों ओर से या हर तरह से, हर तरह से, सर्व तरह से, हर तरह से, सर्व प्रकार से। परिचर्या, चर्या शब्द का अर्थ है कार्य अथवा सेवा, और परि का अर्थ है चारों ओर से या हर प्रकार से, हर प्रकार से जो सेवा की जाती है वो परिचर्या है। परिचर्या केवल एक ही व्यक्ति करते हैं, भगवान बलदेव, हम लोग परिचर्या नहीं कर रहे हैं। भगवान बलदेव अनंत शेषनाग का रूप धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए, गर्भ का रूप धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए, सुदर्शन चक्र का भी रूप धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए, जो शब्द पद में गदा है वो भी साक्षात बलदेव प्रभु ही बने हैं, उनके शरीर में जो ये कौस्तुभ बने हैं, उनका जो पीतांबर है, उनका जो मधु पंख है, ये समस्त उनकी जो भेड़ होगी ये समस्त बलदेव प्रभु ही है अलग अलग रूपों में। इसलिए बलदेव प्रभु कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितार्थ में कि बलदेव प्रभु श्री कृष्ण की हर तरह से सेवा करते हैं, अशेष तरह से सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं कि जिस सेवा में किसी प्रकार की शेषता नहीं है, उस सेवा में कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए उनको शेष कहा जाता है। जो भक्ति की सीमा को पहुंच चुके हैं, जो भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त हो चुके हैं, जो श्री कृष्ण सेवा की चरम सीमा को प्राप्त हो चुके हैं, उस उनकी उनकी जो श्री कृष्ण सेवा है, उनकी श्री कृष्ण सेवा के उनकी श्री कृष्ण सेवा के पश्चात अन्य प्रकार से श्री कृष्ण सेवा कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता, यानी कि जो श्री कृष्ण सेवा की चरम सीमा पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए जो शेष अथवा जो श्री कृष्ण सेवा को अशेष रूप में कर रहे हैं, ये कुछ बाकी नहीं रहता सेवा, हर तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं, एक ऐसी एक भी सेवा बाकी अथवा शिष्ट नहीं रहती अथवा अवशिष्ट नहीं रहती कि जिसको कोई अन्य व्यक्ति कर सके। बलदेव प्रभु हर तरह से कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका श्री कृष्ण का जो आसन है वो भी बलदेव प्रभु है, उनका जो यज्ञोपवीत है वो भी बलदेव प्रभु है, उनके द्वारा किया गया जो आचमन है भोजन आदि वो भी बलदेव प्रभु है, सब कुछ। इसलिए बलदेव प्रभु भी वास्तव में परिचारक है श्री कृष्ण के, हम अपने आप को जो है परिचारक नहीं कर करा सकते और न ही हम उनकी परिचर्या कर सकते हैं, हम तो श्री कृष्ण सेवा के एक अंश को भी कर सकते हैं, सर्वांश में उसे नहीं कर सकते, वो केवल क्योंकि परिकांत में सर्वांश में सेवा कर रहा है, तो उसी तरह से परिचर्या। अब यहां पर परिकह, परिकह शब्द, परि का अर्थ है चारों ओर से और इतह का अर्थ है यहां से, इतह शब्द पंचमी विभक्ति का है, परंतु ये अव्यय भी माना गया है, इसका रूप बदलता नहीं है कभी, कभी भी इसका रूप बदलेगा नहीं, इतर शब्द का, इधर का अर्थ होता है यहां से, यहां से, इतः, यहां से। तो इतः परि, यहां से जो चार ओर, यानी कि चार ओर यहां से, परितर शब्द का अर्थ है चारों ओर यहां से, ये परिशब्द का अर्थ, यानी कि यहां से चारों ओर जो है, चारों ओर से जो इस स्थान को घेरे हुए हैं, इस स्थान को जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, वही परिग्रह शब्द का अर्थ है। और अब परिग्रह शब्द के द्वारा हमें यह भी सूचना मिलती है कि सख्य रसस्य नायकत्वम सूचितम। विविध आचार्यों ने विविध प्रकार की टीकाएं की है इस श्लोक के ऊपर। सख्य रसस्य नायकत्वम सूचितम, सख्य रस के नायक कौन है और समस्त सखाओं के चक्रवर्ती कौन है, शिरोमणि कौन है, इससे परिग्रह शब्द से सूचना मिलती है। क्योंकि जो चक्रवर्ती होता है उस सबके बीच में बैठता है, जो नायक होता है, शिरोमणि होता है, चक्रवर्ती होता है, राजा होता है, सम्राट होता है, उस सबके बीच में बैठता है। जैसे कि वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल की स्मृति में भी कहा गया कि विश्वस्य नाथ रूपो सौ भक्ति वर्त प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्ति तत्पात चक्रवर्ती आख्या अभवत। जो भक्तों के बीच में, भक्तों के चक्र के बीच में जो विराजे हुए हैं, इसलिए जो चक्रवर्ती है विश्वनाथ चक्रवर्ती, जितने भी चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय के रसिक एवं परमहंस महापुरुष महानुभाव भक्त हैं, परम भागवत भक्त है, उन समस्त परम भागवत भक्तों के चक्र के मध्य में विराजे हुए हैं, इसलिए चक्रवर्ती है, यह उनकी स्तुति में भी कहा गया। इसलिए जो मध्य में विराजता हो वो चक्रवर्ती है। और यहां पर परिग्रह का अर्थ है चारों ओर से भगवान घेरे गए हैं, वो सखाओं के द्वारा और गायों के द्वारा। इससे यह अर्थ सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण गोप सखा तथा गायों में शिरोमणि रूप से, चक्रवर्ती रूप से विराजते हैं, उनके इष्ट देव के रूप में। यह सूचना परिग्रह शब्द से मिलती है या इंगित मिलता है। दिस इज इंप्लाइड, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली सेड, इट इज इंप्लाइड। तो उसके पश्चात वत्स पैहि शब्द है, परिग्रह वत्स पैहि। तो जैसे कि कल हम विभक्तियों की विवेचना कर रहे थे, जो तृतीय विभक्ति है उसमें रामेण रामाभ्याम रामई है, अकारांत जितने भी पुल्लिंग के शब्द हैं वो इस तरह से बनते हैं, रामेण रामाभ्याम रामेण है। यदि कहना हो कि एक राम के द्वारा तो रामेण, दो रामों के द्वारा रामाभ्याम, और तीन या तीन से अधिक रामों के द्वारा तो रामई है। उसी तरह से यहां पे वत्सप शब्द है जो कि अकारांत है, और वत्सप शब्द जब तृतीया विभक्ति के बहुवचन में आता है तो वत्स पैहि बनता है, जिसका अर्थ है अनेक सारे द्वार वालों के द्वारा। तीन या तीन से अधिक जो ग्वालवान है, अनेक सारे जो ग्वालवान है, उनके द्वारा परिग्रह जो घेर लिए गए हैं, वत्स पैहि परिग्रह, जो अनेक सारे द्वार वालों के द्वारा, गोप सखाओं के द्वारा घेर लिए गए हैं, वत्स पैहि। तो यहां पे जो वत्स पैहि है वो तो वत्सप शब्द से बना है, वत्सप शब्द से वत्स पैहि बनता है। तो वत्सप शब्द का क्या अर्थ है? तो जिस प्रकार से वत्सप शब्द के समान ही दूसरा शब्द है संस्कृत भाषा में, जिसको भूप कहा जाता है, भूप 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 राजा को कहते हैं, अथवा नृप नृप अथवा भूप राजा को कहा गया है। तो जो नरान पालयति अथवा भूतान पालयति इति भूप अथवा नृप, नरान ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, रामम रामो रामान, वैसे नरम नरौ नरान नरान नरान, यह पालयति सह नृप, और भूतान यह पालयति, जीव भूतान यह पालयति सह भूत,
भूमि पर भूमि पर मतलब भूमि पर
भूमि पर भूमि भूमि है वो दूसरा अर्थ है, मैं अभी उसके उसमें भी जा रहा हूं। तो भूतान जीव भूतान पालयति, यानी कि अपने राज्य में रहने वाले जितने भी जीव हैं, मनुष्य में समस्त जीव, क्योंकि श्री भागवत के प्रथम स्कंद में वहां 17वें 18वें 18वें तथा 19वें अध्याय में जहां भी ये बात की जा रही है, शुकदेव गोस्वामी के आगमन से पहले शौनक के प्रति सूत के द्वारा जहां भी ये बात की जा रही है कि किस तरह से महाराज परीक्षित केवल मानव समुदाय के ही पालन करने वाले नहीं थे, बल्कि उनके राज्य में जितने भी जीव रहते थे उन समस्त के पालन करने वाले थे। इसलिए वो किसी भी जीव की हिंसा नहीं होने देते थे। ऐसा नहीं केवल मानवों की सुरक्षा करें और जो अन्य अजर है, कुकुर है, श्वान है इत्यादि जीवों की हिंसा होने दे, पशुगुरों के द्वारा, कसाईयों के द्वारा नहीं, अपने राज्य में जितने भी जीव थे उन समस्त का भी पालन करते थे, ऐसा वहां पर कहा गया। तो भूतान पालयति, जो समस्त जीवात्माओं का पालन करता है, जीव भूतान पालयति, अपने राज्य में रहने वाले केवल मनुष्य नहीं, समस्त जीव भूतों को जो पालता है, उनका पालन पोषण करता है वह भूत। और इसका दूसरा अर्थ है नरान पालयति, जो नरों का, मनुष्यों का पालन करे वह गृह। इसी तरह से जो भूमि पालयति इति भूपः च, जो भूमि का पालन करने वाला हो, जो भूमि की रक्षा करने वाला हो, जो अपने देश की भूमि है उस अपने देश की भूमि की जो रक्षा करने वाला हो, उस अपने देश की भूमि की सीमाओं की जो रक्षा करने वाला हो, उसको भी भूप कहा जाएगा। भूमि पालयति गृपः च इति भूपः च, उसको भी भूप कहा जाएगा। उसी तरह से यहां पर जो वत्सव शब्द है, वत्सव शब्द के दो तरह के अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो वत्सव शब्द में जो प है वो प पालयति के अर्थ में भी रख सकता है और पान यति के अर्थ में भी रख सकता है। वत्सान पालयति इति वत्सव, वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को, जो गाय के बछड़ों का पालन कर रहा हो उसको वत्सव कहेंगे। यानी कि जो गोप होते हैं, ग्वाल वाल होते हैं, जो गायों के बछड़ों का पालन करते हैं, उनको चराने के द्वारा, उनको चराने के लिए ले जाते हैं और फिर चरने के पश्चात जब वत्स गाय के जो गौ वत्स है वे जब हरी हरी तृणों को तथा घास फूसों का भक्षण करते हैं उसके पश्चात हृष्ट पुष्ट होते हैं। इसीलिए चराने के लिए कौन ले जाता है, ग्वाल वाल ले जाता है। इसलिए ग्वाल वाल एक तरह से अपने बछड़ों को भोजन प्रदान करवा रहे हैं, उनको चराने के लिए ले जाते हैं, तब इसीलिए वो उनके पालन पोषण करता है। अतएव वत्सान पालयति, जो वत्सों को चराने के कारण, वत्सों को हरी हरी घास देने के कारण जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं वे वत्सव यानी कि गो। या फिर वत्सान पानयति, जो बछड़ों को पी रहे हैं, बछड़ों वत्सान पानयति, अथवा जो वत्स संबंधी जो दुग्ध है वत्सान पानयति, तो यहां पे बछड़ों को पी रहे हैं इसका क्या अर्थ है, बछड़ों को पी रहे हैं इसका क्या अर्थ है,
वत्सान पालयति,
हाँ वत्सान पानयति
पान,
पानयति का अर्थ है पान करना, पीना,
पिलाना।
पानयति का अर्थ है, हाँ सही है, पिलाना अर्थ है, वत्सान पानयति वत्सों को जो पिलाना है। हाँ, पानयति जो है वो परस्मयी पदी क्रिया है, और परस्मयी पदी क्रिया का अर्थ है कि क्रिया का जो परिणाम है वो अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता है, स्वयंकर्ता को प्राप्त होता है। तो वत्सान पानयति, वत्सान पानयति का अर्थ है जो वत्सों को पिला रहे हैं, जो वत्सों को दूध पिलाते हैं वो भी वत्सव कहे जाएंगे। तो यहां जो वत्सव पर है, वत्स के पश्चात जो प लगा हुआ है, पर शब्द पानयति के अर्थ में भी आ सकता है और पानयति के अर्थ में भी आ सकता है। जो वत्सों का पालन कर रहे हैं या फिर जो वत्सों को दूध पिला रहे हैं, जो वत्सों को दूध पिला रहे हैं वो भी वत्सान पानयति वत्सव। तो इस प्रकार से जो द्वार बाल है उनको यहां पे वत्सव कहा गया है। उसके पश्चात तृतीय शब्द है वत्सान, वत्सों को चारयन, जो चरा रहे हैं बछड़ों को, जो चरा रहे हैं वत्सान चारयन। तो वत्सान शब्द में वत्स शब्द है, वत्स शब्द से ही द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में वत्सान बनता है, राम रामो रामान वत्स वत्स वत्सान, वत्सान चार बछड़ों को चरा रहे। तो वत्सान वत्स शब्द से बना है। तो वत्स शब्द का अर्थ क्या है, वत्स संबंधी स्व मातायाः पित्रोः च स्ववत्सं प्रति हे वत्स इति वात्सल्य सूचकं शब्दं यः कर्णकुटाभ्यां पिबति शृणोति वा सः वत्सः पिबति शृणोति वा सः वत्सः यानी कि अपने माता के द्वारा सः वत्सः सः वत्सः वत्स शब्द का अर्थ है अपनी माता के द्वारा या अपने पिता के द्वारा अपने बच्चे के प्रति अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य के कारण हे वत्स इस प्रकार से जो संबोधन है इस प्रकार के संबोधन रूपी शब्द को जो अपने दो कानों के द्वारा उसका पान करे उसको पीने या उसको सुने उसको भी वत्स कहेंगे उसको भी वत्स कहेंगे वत्स कहेंगे हे वत्स शब्द का जो श्रवण करे या पान करे उसको भी वत्स कहा जाता है हाँ नहीं वत्स तो है नहीं परंतु यह वत्स शब्द की भी परिभाषा है जो वत्स शब्द का जो कि अपने माता पिता के द्वारा वात्सल्य भाव से संबोधित किया जाता है जिस वत्स शब्द के द्वारा उस वत्स शब्द का जो अपने कर्णपुटों से श्रवण रंगों से जो उसका पान करेगा उसको सुने वो वत्स है वत्सम इस प्रकार से कर्म किया गया तो वत्सान चारायण और उसके पश्चात व्यवहृत शब्द है तो जो बचनों को चारा रहे हैं वत्सान चार तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण ही बचनों के माता पिता के तुल्य हैं और भगवान श्री कृष्ण बचनों को बड़े ही वात्सल्य भाव से एक एक बछड़े का एक एक वत्स का नाम ले लेकर उनको पुकारते हैं और ये जितने भी बछड़े हैं ये जितने भी गौ वत्स हैं वे जब अपना अपना नाम सुनते हैं उस समय तुरंत श्री कृष्णचंद्र के पास आ जाते हैं सन्निकट आ जाते हैं उनके सान्निध्य में आ जाते हैं इसलिए श्री कृष्ण ही यहां पर उनके पिता के तुल्य है जो कि इन बछड़ों को हे वत्स इत्यादि शब्दों को कहने पुकारते हैं तो तुरंत ही वे बछड़े इस शब्द को सुन के उनके पास आ जाते हैं और उसके पश्चात जो विहर्त शब्द है उसकी व्याख्या की जाती है तो चारण पहले चारायण शब्द आता है चारायण शब्द चर शब्द से संबंधित है जैसे हम कहते हैं चर और अचर स्थावर और जंगम जो एक स्थान पर स्थित हो जैसे वृक्ष है उनको स्थावर कहा गया और जो एक स्थान से अन्य स्थान तक गमन करते हैं उनको जंगम कहते हैं तो स्थावरों को तो अचर कहेंगे और जंगमों को चर कहेंगे जंगमों को चर कहेंगे तो यहां पे चारायण शब्द चर शब्द से ही संबंध रखता है चर का अर्थ है एक स्थान से अन्य स्थान पे जाना और चारायण शब्द का अर्थ है चराना तो जब चराना होता है तो एक स्थान के लिए चराया जाता जब एक स्थान पे जो हरी हरियाली घास है उस हरियाली घास की जब एक स्थान में कमी हो जाती है या उस हरियाली घास का जब एक स्थान में अभाव हो जाता है और जब दूसरे स्थान पर हरियाली घास पाई जाती है तो वो जो ग्वालवाल होते हैं वे अपने अपने वत्सों को अपने अपने बछड़ों को उस अभाव युक्त स्थान से जहां पे हरी घास का भाव है तृण का भाव है उस स्थान पर ले जाते हैं इसलिए स्थानांतर होता है इसीलिए चर शब्द से चारायण शब्द का संबंध है चर शब्द का जो स्थानांतर करे जो एक स्थान पर स्थित न रहे और जो चराना है वो भी एक स्थान पर नहीं किया जाता वो भी अनेक भिन्न भिन्न स्थानों पर किया जाता है इसीलिए भागवत में भी वर्णन हुआ है कि जिस समय ये एक स्थान में ब्रज भूमि के किसी एक स्थान में जहां पे हरी घास का अभाव हो जाता था तो फिर ये नंद महाराज है ऋषभानु है इत्यादि जितने भी गोप होते थे वे फिर उस स्थान का परित्याग करके अन्य स्थान को चले जाते थे यहां पे हरियाली घास प्राचुरी में पाई जाती थी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती थी इसीलिए चारायण का अर्थ है ऐसा चराना जो एक स्थान में स्थित न हो जो स्थानांतरित होता है यही चारायण शब्द का अर्थ है उसके पश्चात व्यवहृत व्यवहृत विहार किया हो, चारायण विहार, जो समस्त द्वार बालक के द्वारा घिरे हुए हैं चारों ओर से, एवं जो बछड़ों को चराते हुए विहार कर रहे हैं चारायण, तो इसका अर्थ यह है कि चराने के पश्चात उनको आनंद नहीं मिलता, चराने के पश्चात उनको आनंद नहीं मिलता, चराते हुए उनको आनंद मिलता है चारायण। ये चारायण जो क्रिया है यह वर्तमान कालिक क्रिया मानी गई है, वर्तमान कालिक। चराने के पश्चात भगवान को आनंद नहीं मिलता, चराते समय ही उनको आनंद प्राप्त होता है विहार। और वत्स परिता, वत्स जो वत्सों का पालन करने वाले द्वारपाल हैं उनके द्वारा घेर जाने पर उन्हें आनंद प्राप्त होता है, इस तरह से यहां पर प्राप्त। तो विहारक शब्द का अर्थ है जिसने विहार किया हो उसको विहारक कहेंगे, विहारक अर्थात विहार किया। तो विहारक क्रिया विहार शब्द से संबंधित है, और विहार शब्द के अनेक सारे व्याकरण सिद्ध अर्थ हैं। भगवान श्री विष्णु का और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है हर, हरि तो नाम है ही भगवान का, लेकिन हर नाम भी है। हर नाम भव अथवा शिव को भी सूचित करता है, लेकिन भगवान नारायण को भी सूचित करता है। इसीलिए विष्णु सहस्र नाम में तथा जो अन्य जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अन्य पुराणों में प्राप्त होने वाले जो सहस्र नाम है उनमें भी भगवान का हजारों में से एक नाम है हर। और चूंकि भगवान को वेदांत मूर्तिमान आनंद मानते हैं, रसो वही सह, भगवान साक्षात रस है, साक्षात आनंद है, स्वयं आनंद है, आनंद से युक्त नहीं है, आनंदमय है। जिसके पास आनंद न हो उसको यदि आनंद प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति आनंद युक्त कहलाएगा। जिसके स्वरूप में आनंद नहीं है, जिसके अंदर आनंद नहीं है, जिसको आनंद कहीं से प्राप्त हो रहा है, वह तो आनंद युक्त, आनंद से जुड़ा हुआ, आनंद से संलग्न है, परंतु जो स्वयं आनंद है वो आनंद युक्त नहीं होता, आनंद से जुड़ा हुआ नहीं है, वो स्वयं आनंद होने के कारण वो आनंदमय है, आनंद से बना हुआ। इसलिए भगवान को ब्रह्म सूत्र आनंदमय अभ्यासात के द्वारा आनंदमय बतलाते हैं, आनंदमय बतलाते हैं। और हर भगवान कृष्ण का एक नाम है हर, हर का अर्थ है जो हरण करने वाला, वही अर्थ जो हरि का बताया गया, जो हरण करने वाला है वो हर। तो जिस प्रकार से महेश्वर शिव के पुत्र गणेश को माहेश्वर कहा गया है, जो महेश्वर का पुत्र है वह माहेश्वर, महेश्वर शिव का पुत्र कौन, गणेश, अथवा फिर सुब्रह्मण्यम स्वामी, कार्तिकेय स्वामी स्कंद, उनको भी माहेश्वर कहते हैं, स्कंद कार्तिकेय को भी माहेश्वर कहते हैं और गणेश को भी माहेश्वर कहते हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि वो महेश्वर के पुत्र है इसीलिए, उसी प्रकार से जो हर से उत्पन्न होने वाला वो हार, महेश्वर से उत्पन्न होने वाला महेश्वर, हर से उत्पन्न होने वाला हार। भगवान आनंदमय है और भगवान ही आनंद को देते भी हैं जीवात्माओं के प्रति। जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है तो जीवात्माओं को आनंद देने वाले भी भगवान ही हैं, और आनंद उन्हीं से उत्पन्न होता है क्योंकि वो स्वयं आनंदमय है, आनंद से बने हुए हैं, इसलिए आनंद उन्हीं से उत्पन्न होता है। इसीलिए जो हर भगवान कृष्ण से उत्पन्न हो उसको हार कहेंगे, वो आनंद है। भगवान कृष्ण आनंदमय है, आनंदमय भगवान कृष्ण से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, जो कि वो जीवात्माओं को देते हैं जिस आनंद को, उस आनंद को ही यहां पे हार कहा गया है। हरात कृष्णात यह जात है तद एव हार है, यानी कि हरात, हर से भगवान कृष्ण से जिस आनंद का जन्म होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, जो विशुद्ध आनंद उत्पन्न होता है, विहार है, वि उपसर्ग विशुद्ध अर्थ में यहां पे लगाया गया है, विकृत अर्थ में नहीं। भगवान से जो आनंद उत्पन्न होता है वो विकृत आनंद नहीं होता, वो विशुद्ध आनंद होता है। यद्यपि यहां पर जो वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग विकृत अर्थ में भी आता है, विशुद्ध अर्थ में भी आता है। तो यहां पर विशुद्ध हार या विकृत हार, दो प्रकार के अर्थ माने जाएंगे। परंतु यदि विकृत हार या विकृत आनंद ऐसा अर्थ यदि स्वीकार करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भगवान में किसी प्रकार का विकार आ ही नहीं सकता। भगवान समस्त विकारों से रहित है, इसीलिए भगवान से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वो भी समस्त विकारों से रहित है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। इसीलिए विकृत हार ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता, विशुद्ध हार विशुद्ध आनंद ये अर्थ लगाया जा सकता है। विहार का, विहार शब्द का अर्थ है विशुद्ध आनंद, जो हर भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुआ है उसको विहार कहेंगे। और उसके पश्चात विहार शब्द का दूसरा अर्थ है विश्रंत युक्तानाम सख्य भावाश्रयाणाम गोप सखानाम यह हार आभूषण वा इति विहार। यहां पे विहार में जो वी उपसर्ग लगा है, वी का यहां अर्थ ले लिया गया है विश्रंत से, विश्रंत के लिए यहां पे वी आया है, ऐसा भी माना जा सकता है। विश्रंत को सूचित करने के लिए, विश्रंत को दिखाने के लिए भी यहां पे वी आता है, ऐसा कहा जा सकता है। विश्रंत का अर्थ है जिसमें ऐश्वर्य का रंच मात्र भी समावेश न हो, ऐश्वर्य भाव की रंच मात्र भी गंध न हो, जहां पे केवल शुद्ध माधुर्य ही माधुर्य, उसको विश्रम कहते हैं। यानी कि ब्रजवासियों का जो श्री कृष्ण के प्रति भाव है रागात्मिक भाव, उसको विश्रम कहा गया है। और द्वारकावासी परिकरों का और मथुरावासी परिकरों का जो श्री कृष्ण के प्रति सेवा भाव है वो विश्रम युक्त नहीं है, वो संभ्रम युक्त है। और वैकुंठ में जो भगवान नारायण के विश्वक्सेन लक्ष्मी देवी और चार कुमार आदियों का जो नारायण के प्रति सेवा भाव है वो भी विश्रम युक्त नहीं है, संभ्रम युक्त है, क्योंकि उनका ऐश्वर्य भाव है नारायण में। और द्वारकावासी मथुरावासियों का भी श्री कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव है, परंतु वृंदावनवासी जो सखा है, वृंदावनवासी जो नंद यशोदा विश्वभानु मुखरा पौर्णवासी इत्यादि जो गुरुजन है उनका जो वात्सल्य भाव है, और वृंदावन में निवास करने वाली गोपियों का जो श्रृंगार भाव है कृष्ण के लिए, कांत भाव है, परकिया भाव है, और वृंदावन में निवास करने वाले रक्तक पत्रक चित्रक आदियों का श्री कृष्ण के प्रति जो दास्य भाव है वो संभ्रम युक्त नहीं है, ऐश्वर्य भाव युक्त नहीं है, वो विश्रम युक्त है, उसमें जरा भी ऐश्वर्य है। इसलिए विश्रम युक्त नाम सख्य भावाश्रयाणाम, देखिए पांच रस है, पांचों ही रसों के एक आश्रय होते हैं और एक विषय होते हैं। रस का आश्रय भक्तों को माना गया और रस का विषय श्री कृष्ण को माना गया। रस किसमें है? भक्त में है वात्सल्य। रस किसमें है? भक्त में। भक्त में वात्सल्य है, नंद यशोदा में वात्सल्य है श्री गोपाल के लिए, नंद यशोदा में वात्सल्य है, इसलिए वात्सल्य रस के आश्रय तो नंद यशोदा हुए, परंतु वो किसके लिए है वो वात्सल्य भाव, कौन उसका विषय है, हु इज सब्जेक्ट ऑफ दिस पेरेंटल अफेक्शन, हु इज द सब्जेक्ट विषय किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण विषय है। तो सख्य भाव के आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण के ग्वाल भाव, गोप सखा, गोप सखा सख्य भाव के आश्रय है, और सख्य भाव का विषय कौन है? गोप सखाओं के मित्र श्री कृष्ण। तो इसीलिए विश्रम युक्तानाम सख्य भावाश्रयानाम गोप सखानाम यह हार, विश्रम भाव वाले सख्य भाव के आश्रय स्वरूप जो गोप सखा है, उन गोप सखाओं के जो हार है, यहां पे हार शब्द का अर्थ क्या माना गया है? पुष्पमाला, पुष्पमाला, पुष्पमाला को भी हार कहते हैं। पुष्पमाला जिस तरह से किसी भी व्यक्ति का श्रृंगार करती है, किसी भी व्यक्ति का आभूषण स्वरूप है, श्रृंगार स्वरूप है, अलंकार स्वरूप है, उसी प्रकार से समस्त विश्रम भाव वाले सख्य भाव के आश्रय गोप सखाओं के जो हार सदृश है, हार सदृश नहीं स्वयं जो हार है, यानी कि उनके आभूषण है, उनके अलंकार है, उनको सजाने वाले हैं, उनको भी विहार कहते हैं। और वो कौन है? श्री कृष्ण। जिस तरह से पुष्पमाला व्यक्ति को सजाती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी हार है, पुष्पमाला है, जो कि समस्त सख्य भाव के आश्रय स्वरूप गोप सखाओं की महत्ता को बढ़ाने वाले हैं, उनके अलंकार स्वरूप है, उनके आभूषण स्वरूप है। ये विहार विश्रम युक्त सखाओं के हार पुष्पमाला अलंकार विहार। उसके पश्चात विहार शब्द का अन्य अर्थ देते हैं विशुद्ध प्रेय भावाश्रय है गोपई है यह हारम पराजयम स्वीकरोति इति विहार। विशुद्ध प्रेयो भग भावाश्रय है गोपई है यह हारम पराजयम स्वीकरोति इति विहार। यहां पे विहार में जो वी उपसर्ग है उसका अर्थ विशुद्ध प्रेयो भक्ति रस यदि ले लिया जाए, प्रेयो भक्ति रस कहते हैं सख्य रस को, भक्ति रसामृत सिंधु में सख्य रस को प्रेयो भक्ति रस कहा गया है। रूप गोस्वामी सख्य रस ये परिभाषा नहीं उपयोग में लाते, इसका प्रयोग नहीं करते, सख्य भाव के लिए सख्य रस के लिए रूप गोस्वामी प्रेयो भक्ति रस इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जो विशुद्ध सख्य भाव या प्रिय भाव के आश्रय हैं कौन है वो, उनके गोप सखा, उन गोप सखाओं के द्वारा जो हार को, यहां पे हार का अर्थ क्या लिया जाएगा पराजय। विशुद्ध प्रेय प्रेयो भक्ति रसमय जो गोप सखा है उन गोप सखाओं के द्वारा जो हार को अथवा पराजय को स्वीकार करके स्वीकार करें, उनके हाथों में पराजय को या हार को स्वीकार करें अपने सखाओं के हाथों से, अपने सखाओं के द्वारा, वो भी विहार। और वो कौन, श्री कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने उद्धरण दिया है कि एक समय वरुथप नाम का सखा श्री कृष्ण का, उसने ललकारा श्री कृष्ण को कि हे कृष्ण तुम यदि वास्तव में ही पुरुष हो और वास्तव में ही यदि वीर हो और यदि तुम में पुंसत्व है तो एक बार मेरे से द्वंद्व युद्ध करके दिखाओ। और उस द्वंद्व युद्ध में श्री कृष्ण पराजित हुए हैं, हार को प्राप्त हुए हैं, हार को उन्होंने स्वीकार किया है, पराजय को स्वीकार किया है वरुथप के द्वारा। इसीलिए जो विशुद्ध प्रेयो भक्ति रस के आश्रय वरुथप के द्वारा हार को स्वीकार किए हैं, पराजय को स्वीकार किए हैं, वो भी विहार, श्री कृष्ण का एक अन्य नाम। और ये विहार शब्द के अर्थ है, यानी कि श्री कृष्ण ने विहार तो किया ही गोप सखाओं के साथ और गायों के साथ, उन्होंने विहार तो किया ही परंतु वो स्वयं भी विहार स्वरूप है। ऐसा मत मानना कि जिस तरह से हम लोग जब विहार करते हैं उद्यान में शयन करने के लिए निकलते हैं विहार करते हैं उस समय हमें आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम में आनंद नहीं था, आनंद हमें मिला है उद्यान से मिला है, या उद्यान में हमारे मित्रों को देखने से वो आनंद मिला है, या उद्यान के जो मरकट वानर इत्यादि पशु है उनको देखने से आनंद मिला है, या उद्यान में जो सघन वृक्ष है उनको देखने से आनंद मिला है, आनंद की हमने प्राप्ति की है। विहार साधारण जगत में तो विहार शब्द का यही अर्थ होता है, मैंने उद्यान में जाके विहार किया, इसका अर्थ है कि उद्यान से मुझे आनंद प्राप्त हुआ है, उद्यान ने मुझे, बगीचे ने मुझे आनंद दिया है, वहां मेरा विहार हुआ। परंतु केवल भगवान श्री कृष्ण आनंद प्राप्त करते ही नहीं है, स्वयं आनंदमय भी है, स्वयं भी विहार है, वो विहार करते नहीं है, वो विहार करते भी हैं। गोप सखाओं के द्वारा जब उनको आनंद मिलता है तो यह कह दिया जाता है कि उन्होंने विहार किया, उन्होंने आनंद को प्राप्त किया, परंतु फिर आनंद उनसे कोई भिन्न चीज तो है नहीं, वो स्वयं भी तो आनंद है, इसलिए स्वयं आनंद होने के कारण वो स्वयं विहार भी है, वो विहार करने वाले भी है, विहार के आनंद को प्राप्त करने वाले भी है, विहार के आनंद का अनुभव करने वाले भी है, और स्वयं आनंद स्वरूप होने के कारण स्वयं भी विहार है, ये श्री कृष्ण। और विभु, विभु का अर्थ है यहां पर शब्द प्रभुपाद ने किया है सर्वशक्तिमान। तो यहां पे मानव विभु शब्द के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी भक्तों के द्वारा उनको आनंद प्राप्त होता है, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप आनंदमय होने पर भी भक्त उनको आनंद देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्वयं आनंद है, नहीं, स्वयं आनंद होने के पश्चात भी उनको आनंद प्राप्त करने की तृष्णा रहती है, वो स्वयं तो आनंद है, परंतु साक्षात आनंद स्वरूप होने पर भी उनको आनंद प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तृष्णा रहती है, वासना रहती है, इसीलिए उनको भक्तों को पराजित होना पड़ता है। हम जब किसी व्यक्ति से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का हमें पराधीन बनना पड़ता है। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से आनंद प्राप्त करना चाहता है तो प्रेमिका के वश में उसे जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से भगवान स्वयं आनंदमय होने पर भी, स्वयं विहार होने पर भी, आनंद स्वरूप होने पर भी, सुख स्वरूप होने पर भी उनके मन में ये इच्छा है कि मैं भक्तों से आनंद को प्राप्त करूं। इसीलिए वो विभू होने पर भी, सर्वशक्तिमान सर्वानंद होने पर भी वो भक्तों के पराधीन हो जाते हैं, उनके दास हो जाते हैं। किस तरह से? वैसे तो श्रीमद् भागवत में कहा गया, यम ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुदय है स्तनवंति दिव्य है स्तवय वेदय है सांग पद क्रम उपनिषद गायंति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और जन्मांत्यस्य में कहा गया कि मुह्यन्ति असुरयः देवता लोग जिनके बारे में मोहित हो जाते हैं, जिनको नहीं जान पाते। और वहां यम ब्रह्मा में कहा गया कि देवता और दानव दोनों ही जिनके आदि को नहीं जान पाते, जिनके मध्य को नहीं जान पाते, जिनके अंत को नहीं जान पाते। वैसे जो अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है, अधोक्षज है, वैसे भगवान। परंतु वैसे भगवान अपने शुद्ध भक्त के द्वारा जान लिए जाते हैं, और जान लिए ही नहीं जाते, ऐसे भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में भी आबद्ध हो जाते हैं। साधनो हृदय मह्यम साधना हृदय, तो हम हृदय में जाकर फंस जाते हैं। भक्ति रूपी जो सूत्र है, यज्ञोपवीत है, उसके द्वारा वो फंस जाते हैं भक्त के हृदय में, फिर निकल नहीं पाते, ऐसी गांठ लग जाती है। भक्ति सूत्रों पर अंत पद्म पुराण में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण भक्त के हृदय में जाकर भक्ति सूत्रों पर अंत है, भक्ति के सूत्र से, भक्ति की जलेऊ से, भक्ति के यज्ञोपवीत से ऐसी गांठ के द्वारा आबद्ध हो जाते हैं कि सत्य और भक्ति अवरुद्ध कि भागवत के श्रवण से तुरंत ही ये भगवान हृदय में आके ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाते, वो अटक जाते हैं भक्त के हृदय में। भक्ति जो है उनको, भक्ति का जो सूत्र है उनको बाहर नहीं निकलने देता। तो उसी तरह से यहां पे ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में केवल आबद्ध ही है, नहीं, यदि भक्त चाहे तो भक्त भगवान को अपनी मुट्ठी में भर के बद्ध जीवात्मा को भी दे सकता है। अपने कृपा, अपना जो कृपा पात्र बद्ध जीव है, जो कि साधन भक्ति कर रहा है, साधक है, उस साधक भक्त के प्रति भी यदि गुरुदेव कृपालु हो जाए तो भगवान को अपने हृदय से निकाल के अपनी मुट्ठी में जकड़ के उस अपने शिष्य साधक भक्त के हृदय में उन भगवान को जबरदस्ती डाल देते हैं। इसलिए तो वहां पद्म पुराण में कहा गया कि चिंतामणि लोक सुखम सुद्र स्वर्ण संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे चिंतामणि तो बहुत से बहुत पृथ्वी का सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, परंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभ वैकुंठ धाम दे देते हैं। या फिर वैकुंठ शब्द का दूसरा अर्थ भगवान भी है। वैकुंठ का अर्थ केवल भगवान का धाम ही नहीं बताया गया शास्त्र में, भगवान को भी वैकुंठ कहते हैं। इसलिए या तो भगवान के धाम को दे देते हैं या फिर स्वयं भगवान को ही दे देते हैं, गुरु प्रसन्न होकर भगवान को अपनी मुट्ठी में जकड़ के। इसीलिए यद्यपि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुदः के अनुसार भगवान के आदि मध्य अंत को देवता नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो नाम श्रेष्ठ मनम शची पुत्र मत्र स्वरूपम रुद्रग्रजुरी माधुरी गोष्ठवादीन राधाकुंडम गिरीवर महो राधता माधवाशाम प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्री गुरु तम नदोस्मी। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने मुक्ता चरित्र के मंगलाचरण में कह दिया कि अरे मेरे गुरु श्री रूप गोस्वामी ने मुझे क्या क्या उन्हें प्रदान किया, मुझे सब कुछ दे दिया है। अरे सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु को मुझे दिया है, उसके पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संघ को मुझे दिया, उसके पश्चात मेरे रूप गोस्वामी की अग्रज जो सनातन गोस्वामी है उनके संघ को भी मुझे प्रदान किया, उसके पश्चात मुझे मथुरा भूमि में निवास स्थान प्रदान किया, उसके पश्चात मुझे साक्षात गिरिराज गोवर्धन और राधा कुंड का जो आश्रय है वो प्रदान किया। अरे और तो क्या, जो बल्लवीकांत गोपीकांत गोपी वर्णम श्री कृष्ण है, श्री गोविंद है, उनको भी मुझे प्रदान कर दिया मेरे गुरु श्री रूप गोस्वामी ने प्रसन्न होके। इसलिए यदि भी देवता लोग तो भगवान के आदि मध्यंत को नहीं जान पाते हैं, परंतु जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के वशीभूत हो जाने के कारण भगवान के भक्त उनको मुट्ठी में भर के अपने शिष्य के प्रति भी दे देते हैं। और भगवान क्यों अपने भक्त के वशीभूत होते हैं? वो तो विभू है, सर्वशक्तिमान है, सर्वानंद है, स्वयं आनंद है, लेकिन फिर भी उनको अपने भक्तों से आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए फिर भक्तों के वश में होना ही पड़ता है। इसलिए यहां पर विभू शब्द के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सर्वशक्तिमान सर्वानंद होने के बावजूद भी वो भक्तों के दास हैं, वो गोप सखाओं के साथ विहार उनको करना पड़ता है, स्वयं आनंद होने पर भी गोप सखाओं के साथ विहार करने पे उनको आनंद प्राप्त होता है। ये यहां पे इसका अर्थ है विभू शब्द का। और यमुना, यमुना जो यम की भगिनी है, यमराज की जो बहन है और सूर्य की जो पुत्री है, यमराज की भगिनी होने के कारण यमुना उसके पश्चात पूर्व बने। उपवन का अर्थ है बगीचा। तो यहां पे उपवन शब्द की बड़ी सुंदर एवं मार्मिक परिभाषा की गई है। उप जो है एक प्रकार का उपसर्ग है, वन के आगे जब उप नाम का उपसर्ग लगता है तो उपवन बनता है। तो उप का अर्थ है पास में या निकट में, यानी कि सिमिलर, सिमिलर टू और नियर बाय, जो वन के समान ही हो। उपवन जो वन के समान ही हो उसको उपवन कहा जाएगा। वन के समान का अर्थ है कुछ लक्षण तो वन के हैं परंतु फिर भी वन नहीं है, इसलिए वन से भेद भी है। वन के समान का अर्थ है कि वन में जो लक्षण होता है, जंगल का जो लक्षण होता है, वो लक्षण उपवन में होता है, इसलिए वो वन के समान है, वन के निकट है, वन के नजदीक है, उपवन वन के समान। परंतु फिर भी वन नहीं है, उपवन है, इसलिए वन से उसमें कुछ अंतर भी है, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वन, इट्स कॉल्ड उपवन। तो इसीलिए समानता क्या है, उपवन में जो वन की समानता है वो क्या है, तो यहां पे कहा गया है कि वृक्ष स्थानतायाम यह वन समानम, परंतु यस्मिन हिंसक शार्दूल व्याघ्रा गया न सन्ति। यानी कि वन के दो लक्षण हैं, वन के दो लक्षण हैं। एक लक्षण तो वन का यह है कि वन में सघन वृक्ष होते हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं, उसको जंगल कहा जाता है, वन कहा जाता है। तो उस दृष्टि से तो जो वन के समान है, उपवन में भी सघन वृक्ष होते हैं, चारों तरफ वृक्ष वृक्ष होते हैं, इसलिए तो यहां पर कहा गया है संकुलित। संकुलित का अर्थ है जहां सम्यक प्रकार से वृक्षों का कुल है, जिस प्रकार से कुल परिवार को कहा जाता है, परिवार में सदस्य ही सदस्य होते हैं, सदस्यों के समुदाय को कुल कहा जाता है, संबंधियों के समुदाय को कुल कहा जाता है, और सब का अर्थ है सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से। यानी कि जहां पे पूर्ण मात्रा में जहां पे वृक्षों का समुदाय है, वृक्षों का कुल है, वो संकुलित, सम्यक तरह से, सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से, जहां पे वृक्षों का कुल अथवा समुदाय है, जहां पे सघन वृक्षावली है, जहां वृक्ष वृक्ष है। तो जिस प्रकार से वन में भी वृक्ष होते हैं, सघन वृक्ष होते हैं, जरा भी स्थान खाली नहीं होता वृक्षों के बिना, उसी तरह से जो उपवन होता है, उपवन में भी वृक्ष ही वृक्ष होते हैं, इसलिए उस दृष्टि से वो वन के समान होने के कारण उपवन है। उपका अर्थ है समान, वन के समान, परंतु वो वन नहीं है, उपवन है, इसलिए वन से उसमें कुछ भेद भी है, अंतर भी है। और वो भेद क्या है कि वन में जिस तरह के हिंसक प्राणी निवास करते हैं, व्याघ्र, सिंह, शार्दूल इत्यादि, वो हिंसक प्राणी उपवन में नहीं होते। इसलिए वृंदावन के जो उपवन है, निकुंज है, यमुना के तटवर्ती जहां पे भगवान श्री कृष्ण विहार करते हैं, वहां यद्यपि सघन वृक्ष है, तथापि जो हिंसक प्राणी है वो हिंसक प्राणी नहीं है, इसलिए उपवन वन से भिन्न भी है और एक दृष्टि से उपवन वन के समान भी है। उपवन का ये अर्थ है। और गुजब का अर्थ है जहां जिस वन में गुजार हो रहा है, शब्दायमान जो हो रहा है, कोमिलाओं के द्वारा जो पूजित तो होता है, सारसों के द्वारा, चंद्रभागों के द्वारा, हंसों के द्वारा, राजहंसों के द्वारा, मयूरों के द्वारा, शुभों के द्वारा, सारिगाओं के द्वारा जो पूजित होता है, उनके कलरव निनाद से, भ्रमरों के द्वारा, मधुरों के द्वारा जो पूजित होता है, वैसा पूजक गुंजायमान होने वाला, उसके पश्चात द्विज, द्विज का अर्थ है जिसने दो बार जन्म लिया हो। द्विज यहां पक्षी को कहा गया है, पक्षियों के द्वारा द्विज शब्द का यह अर्थ है, जहां बहुत सारे पक्षी हैं। तो पक्षी के दो जन्म बताए गए हैं, पक्षी जो है अंडज कहलाया गया है, पक्षी को अंडज बताया गया है शास्त्र, क्योंकि पक्षी का प्रथम जन्म है अंडे के रूप में। जब वो अंड माता से बाहर निकलता है उसकी उसके उदर से, तो अंड रूप में पक्षी का पहला जन्म, और फिर अंड को फोड़ के जब पक्षी बाहर आता है, वो उसका का दूसरा जन्म, इसने पक्षी को भी द्विजक आज गया है जिसके दो जन्म हुए हैं। और सकुलित का अर्थ पहले समझा दिया है, और अंग्रिपे यानी कि अंग्रिपे, अंग्रिपे का अर्थ है वृक्ष में, जहां जिस उपवन के वृक्षों में पक्षी पक्षी हो, द्विज ही द्विज हो, अंग्रिपे का अर्थ है वृक्षों में। अंग्रिप का अर्थ यहां वृक्ष किया गया है। कैसे अंग्रिप शब्द का अर्थ यहां पर वृक्ष क्यों किया गया है? इसीलिए क्योंकि अंग्रि शब्द का अर्थ होता है चरण, अंग्रि शब्द का अर्थ होता है चरण पैर। तो अंग्रिप शब्द का अर्थ आचार्य ने क्या किया है, श्री कृष्ण बलराम यो हो चरण चरण यो हो अंग्रियो हो ताप हरण कार्य पालन यह करोति सह अंग्रिप। यहां वृंदावन के वृक्षों को अंग्रिप क्यों कहा गया है? अंग्रिप शब्द अंग्रिप में जो अंग्रि शब्द है वो तो चरण का अर्थ बताता है, तो वृंदावन के वृक्षों को यहां अंग्रिप इसीलिए कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण बलराम के जो चरण है अथवा अंग्रि है, उनके चरणों के उनके अंग्रियों का ताप हरण जो करते हैं, यानी कि वृक्ष जो सघन वृक्ष है वो छाया प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करने के द्वारा श्री कृष्ण बलराम के चरणार बिंदुओं में उनकी अंग्रियों के ताप का हरण करते हैं या उनके अंग्रियों का पालन करते हैं या उनके चरणार बिंदुओं का पालन करते हैं, उनके चरणार बिंदुओं को सुशीतल छाया प्रदान करके तथा उनके चरणार बिंदुओं के ऊपर जो ताप है उस ताप से उनको सुरक्षित रखने के द्वारा उनके चरणार बिंदुओं का जो पालन करते हैं, अंग्रियों का जो पालन करते हैं, वे वृंदावन के वृक्ष अंग्रिप। पालन यह करोति अथवा पाति, पाति भी यहां पे आ सकता है, पाति जो रक्षा करते हैं कृष्ण और बलराम के चरणों की सूर्य के प्रचंड ताप से, पाति वो अंग्रिप उनके अंग्रि की रक्षा करने के कारण। और उसके पश्चात दूसरा अर्थ दिया गया है, यस्मात् अंग्रे है तरुमूलात् वारुणी मधुच प्रादुर्भवति श्री बलदेवस्य पानार्थम सह अंग्रिप। यानी कि जिसके अंग्री से, अंग्री का अर्थ है चरण, तो जैसे चरण हमारे शरीर का सबसे पहला अंग है, उसी प्रकार से वृक्ष के चरण कमल क्या है, वृक्ष की जो जड़ें हैं, वृक्ष का जो तरु मूल है, वृक्ष की जो जड़ है, वृक्ष की जो तरु मूल है, वो ही वृक्ष के चरण कमल है अंग्री। वृक्ष का अंग्री क्या है, वृक्ष के चरण कमल क्या है, वृक्ष के तरु। और वर्णन आ रहा है शास्त्रों में कि वृंदावन के वृक्षों के अंगुलियों से, उनके चरण कमलों में से, वृंदावन के वृक्षों के तरु मूलों में से, उनकी जड़ों से वारुणी नाम की मदिरा तथा मधु प्रवाहित होता है, और जिस मधु का पान श्री बलदेव करते हैं, इसीलिए भी अंग्री पर। जिन वृक्षों के चरणों से निकलने वाली मधु तथा निकलने वाली वारुणी मदिरा श्री बलदेव के पानार्थ हो, तथा श्री बलदेव जिस वृक्ष के चरणों से निकलने वाले मधु का पान करते हो, वो अंग्रिप। वृक्ष के अंग्रियों से, चरणों से निकलने वाले मधु वारुणी का पान करने के कारण वो वृक्ष अंग्रिप। और इसका अन्य अर्थ है, यस्य श्री कृष्णस्य अंग्रयोः चरणयोः शांतरसम आश्रय रूपेण पालयति स्वस्मिन् सह अंग्रिप। जो श्री कृष्ण के अंग्रियों को, श्री कृष्ण के अंग्रियों का, उनके चरणों का जो शांत रस है, शांत रस यानी कि शांत भाव, तो जो शांत रस होता है, शांत रस के द्वारा श्री कृष्ण के चरणारविंद की ही तो सेवा होती है। ये जो पांच रस हैं, शांत सख्य सकल माधुर्य इत्यादि, ये जो पांच रस है भक्ति के, इनका प्रयोजन क्या है, श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करना, उनके अंग्रियों की सेवा करना। इसीलिए जो शांत रस है, वृक्ष वृंदावन के वृक्ष शांत रस में कृष्ण की सेवा करते हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं और वृंदावन की जो गायें हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कहा, वो शांत रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। इसीलिए यस्य श्री कृष्ण स्य अंग्रयोः चरणयोः शांत रसम आश्रय रूपेण पालयति स्वस्मिन् सह अंग्रिप। श्री कृष्ण के अंग्रियों का, उनके चरण कमलों का जो शांत रस है, उस शांत रस का जो स्वयं आश्रय रूप होकर अपने अंदर जो उसका पालन करते हैं शांत रस का, जो शांत रस की वृद्धि करते हैं अपने अंदर, वो है अंग्री पर्व। श्री कृष्ण के अंग्री से संबंधित जो उनका शांत रस है, और ये शांत रस का जो अपने शरीर में पालन करते हैं, वृद्धि करते हैं, अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में शांत रस को बढ़ाते ही जाते हैं कृष्ण के प्रति, वो भी अंग्री पर्व। क्योंकि अंग्री शब्द का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने ये हरि अरविंदाक्ष क्षयस्त भावा विशुद्ध बुद्धय आरोग्य परिचय परम पदम तथा पतम के दोनाद्रित युष्म अंग्रया। यहां पे भागवत का ये जो श्लोक है उसमें अंग्री शब्द का अर्थ विश्वनाथ जी ने भक्ति किया है, यानी कि शांत रस रूपा जो भक्ति है उसको ही वहां विश्वनाथ जी ने अंग्री कहा है भगवान का चरण कमल। तो शांत रस रूपा जो भक्ति है या भगवान कृष्ण का जो चरण कमल है उसको जो अपने हृदय में उसकी वृद्धि करते हैं, उसका पालन करते हैं, वो अंग्री पर्व। वैसे वृंदावन के वृक्ष, या फिर यस्य श्री कृष्ण से अंग्रयो हो शांत रसम यह पिबति सह अंग्री पर्व। जिन श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो शांत रस है, उनके चरण कमलों से निकलने वाला जो शांत रस का आनंद है, उस शांत रस के आनंद को जो पीते हैं वो भी अंग्री पर्व। इस प्रकार से ये वृंदावन के वृक्षों को यहां पे अंग्री पर्व क्यों कहा गया है, इसकी समीचीन व्याख्या संपन्न हुई। आज जो है आपका मैंने 1.5 घंटा यहां पर मिला दिया है, परंतु विषय ही कुछ ऐसा था, विषय ही इतना जटिल है कि इसकी यदि इस प्रकार से व्याख्या न की जाए तो ठीक से समझने भी नहीं आ सकता है। इसीलिए अब वैसे भी जो है, जैसे कल राज श्री प्रभु बता रहे थे, अनेक अनेक जन्मों तक हमने श्री कृष्ण वैमुख्य का प्रदर्शन किया है। अभी इस जन्म में यदि हमें बहुत करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों अरबों अरबों वर्ष जो है हमने कृष्ण की सेवा के बिना व्यतीत किए हैं, और यदि हमें 1.5 घंटा भी कृष्ण के विषय में सुनने को मिल रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वहां तो इतने करोड़ों वर्ष गवा के आया है, यहां तो सदुपयोग हो रहा है। इसीलिए यदि थोड़ा अधिक समय भी हो जाता है तो कोई वो नहीं है।
जो अंग्रीप का जो सामान्य अर्थ है, तो अपने पैरों से जो पीते हैं, पानी पीते हैं, इसलिए अंग्रीप जो सामान्य अर्थ है।
हाँ, वो तो सामान्य अर्थ है। हाँ सही है, उसको बताना भूल गए। वो जो है सामान्य अर्थ है अंग्रीप शब्द का। अंग्रिया स्व अंग्रिया यह जलम पिबति सह अंग्रिप, जो अपने अंग्री से, जो अपने चरण कमलों से, जो अपने तरुमूल से, जो अपनी जड़ों से पानी को पीता हो पृथ्वी से खींच के, वो वृक्ष उसको अंग्रिप कहा जाता है। ये तो सामान्य अर्थ है, परंतु वृंदावन के जो वृक्ष है वो सामान्य वृक्ष को है नहीं, इसलिए उनके लिए विशेष परिभाषा ही देनी पड़ती है। परंतु ये इसका जो है अंग्रिप शब्द का मूल अर्थ है। ऐसा है जो गोप जाति है वो शत प्रतिशत वैश्य भी नहीं मानी गई है और शत प्रतिशत शूद्र भी नहीं मानी गई है, दोनों के बीच में है, इसीलिए उनको सतशूद्र कहा जाता है। सतशूद्र का अर्थ है जो शूद्रों से महान हो। तो एक दृष्टि से अभी पता नहीं स्मृतिकारों ने ऐसा क्यों कहा है, परंतु ये जो राजर्षि मनु है, राजर्षि मनु ने इस प्रकार से कहा है कि जो गायों का पालन करने वाले हैं वो सत शूद्र ही है।
गीता में भगवान बता रहे हैं जिन कर्म है वैसे के, उसी गोरक्षे वाले गौं की रक्षा शुद्धि करना और वैसे
के। इसीलिए तो उनको कभी कभी वैश्य भी माना जाता है गोपों को, और कभी कभी शूद्रों के भीतर भी माना जाता है। ऐसा है, उनको वैश्य भी माना गया है और सतशूद्र भी माना गया
है।
नहीं, इसीलिए सतशूद्र माना गया है। सतशूद्र का अर्थ है जो श्रेष्ठ हो शूद्रों में, यानी कि जो सतशूद्र होता है वो फिर परिचर्या नहीं करता, वो सामान्य शूद्र की श्रेणी में नहीं है जो परिचर्या करते हैं। अभी कोई रहस्य रहा होगा कि जिस कारण से मनु संहिता के और जो याज्ञवल्क्य की स्मृति इत्यादि जो स्मृति शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, उनके रचयिताओं ने गोप समुदाय को एकदम से वैश्य जाति में भी नहीं रखा और एकदम से शूद्र में भी नहीं रखा, दोनों के बीच में रखा है, इसका कोई कारण तो रहा ही होगा उनके अनुभव में या उनकी विचारधारा में। लेकिन यदि इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो जो कुल्लूक भट्ट की टीका है मनु संहिता के ऊपर, जो कि सबसे अधिक प्रामाणिक टीका मानी जाती है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। क्या इस रहस्य के बारे में यदि पता लगाना हो तो अभी वर्तमान में तो इस रहस्य से मैं अनुभव कर हूं। भागवतम की जय।
हरे कृष्ण।